जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करने से बीमारियां अच्छी नहीं होती। अगरचे जाहिरी बीमारी को कम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको इग्नोर करके, नजरअंदाज करके समझते हैं बहुत तवक्कुल और जोहद का मामला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इलाज कराना सुन्नत है और अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी जरूरी है। वो चीजें ना खाए जिससे नुकसान होता है, शुगर है, बीपी है, एहतियात करें। कुछ नहीं भी है तो भी एहतियात करें। ईद के दिनों में आदमी ज्यादा खा लेता है, फिर आके वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पेट एक महीने तक आदि नहीं होता, फिर एकदम उस पर लोड डाला जाता है। जनरेटर का लोड ज्यादा डाल दिया जाए, जनरेटर बैठ जाता है। पेट पे लोड ज्यादा डाल दिया जाए, पेट बगावत पे उतर आता है। इसलिए एतदाल के साथ खाना चाहिए, और इसीलिए एतदाल के साथ हर चीज, हमारे हमारी शरीयत हर चीज में मौतदिल है। यहाँ तक कि कोई बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ रहा है, कोई अभी फजर हो गई अब जाके नफिल पढ़ने लगे, मना है। अभी बिल्कुल आराम करो, अभी इतनी लंबी नमाज पढ़ ली, इशराक तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, असर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। हर चीज में एतदाल है। असर के बाद मगरिब तक कोई नमाज नफिल नहीं है। फजाए उम्री है किसी की जिम्मे तो वो पढ़ सकता है। जब नमाज रोजों में एतदाल है, 30 दिन रोजा रखा, 29 दिन रखा, ईद के दिन ना रखो, नाजायज है। ईद के दिन रोजा रखना नाजायज है। उसके बाद भी 6 रोजे हैं इसमें, तो उसमें फरमाया तो जो उसके बाद 6 रोजे रखे, सित्तत मिन शव्वाल काना का सयामुद्दहर, वो ऐसा हो जाता है जैसे पूरे साल रोजे रखे। उसको भी बाज़े लोग ईद के दूसरे दिन से रखना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं फिर वर्फदानी रखना जायज है। मालूम कर ले मसला, दूसरे दिन क्या होता है, मेहमान आ रहे होते हैं, आदमी खुद जा रहा होता है, तो ये जरूरी नहीं। पूरे शव्वाल में 6 दिन आदमी कहीं ना कहीं से निकल ही सकते हैं, 29-30 दिन में से शव्वाल में है 6 दिन। इसके लिए मुसलसल भी जरूरी नहीं है और दूसरे दिन से भी जरूरी नहीं, उसके बाद ताकि जब काम वाम शुरू हो जाए फिर आदमी रखना शुरू करे, वरना मेहमानों का आना जाना होता है। अब मेहमान आया हुआ है, वो जो है मुंह बसूर के बैठे हुए हैं, रोजे की वजह से खा पी नहीं पा रहे, तो इससे बेहतर है मेहमानों की खातिरदारी करना और उसके बाद रोजे रख लेना, और न रखेगा भी तो कोई गुनाह नहीं होगा। इसीलिए इसको नफिल करार दिया। कोई रात भर तहज्जुद ना पढ़े कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजर छोड़ेगा गुनाह होगा। रात भर कोई तहज्जुद पढ़े और फजर छोड़ दे तो भी गुनाहगार होगा। हर चीज में हमारी शरीयत मौतदिल है। इतना जागने को मना किया कि जिससे नींद खराब हो जाए और इसकी वजह से आदमी की सेहत गैर मौतदिल हो जाए। 3 बजे रात को उठ गए और रोजाना 3-4 घंटे नींद हो रही है, इससे भी तबीयत बिगड़ जाती है। लोग समझते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मशायख को इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों को अपनी अच्छी आदतें भी बताए, अपनी बुरी आदतें भी बताए। ये उसको अलग से बताए कि मैं 3 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, फिर तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर ये नींद जाके मैं ऑफिस में पूरी करता हूँ कारखाने में, ताकि सेट तो होता नहीं है, तो ये क्या है, ये खयानत है। वहां आपने रोजी, हलाल रोजी को हराम शामिल कर लिया उसमें, तो शेख बताएगा कि भाई तो आपको किसने कहा इतना जागो, आप आखिर रात में 4 बजे उठ जाओ, अगर उठना ही इतना जरूरी है। वो भी नहीं उठ सकते, शुरू रात में ईशा के बाद 4 रकत नफिल पढ़ लो, 6 रकत, 8 रकत नफिल पढ़ लो, उसके बाद 6 घंटे कम अज कम नींद पूरी करो। 6 से 7 घंटे औसतन 24 घंटे में नींद पूरी करनी चाहिए, वरना फिर आदमी का दिमाग खुश्क होने लगता है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो जहां जिस मजहब में इबादत और ताआत को भी मौतदिल रखा गया, उसमें सेहत का कितना ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा आम तौर पे रखते हैं लोग, लेकिन बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, फिर अचानक जब कोई हमला होता है तो फिर वो परेशान होते हैं। इसलिए फिर वो ये ना समझे कि ये पढ़ रहा हूँ मैं, वो पढ़ रहा हूँ। हमारा पढ़ना जैसा मैंने बताया उस दर्जे का नहीं, हमारा तवक्कुल उस दर्जे का नहीं जो खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला का तवक्कुल था, कि उन्होंने जहर का की बोतल पी ली और उनको कुछ नहीं हुआ। हमारा तवक्कुल उस दर्जे का नहीं है। हमें उसी पे अमल करना चाहिए कि हम जाहिरी असबाब को इख्तियार करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। तो एक जिस तरह जाहिरी बीमारियां होती हैं वो नजर आ जाती हैं, फौरन बुखार पता चल जाता है, आदमी दवा लेता है, बातिनी बीमारी पता नहीं चलती। मसला ये कब पता चलेगी, जब हम औलिया अल्लाह में बैठेंगे। सिर्फ बयान से भी नहीं होता, बयान में कैसे बताया जाएगा कि आपके अंदर ये मर्ज है, ना वो पूछता है, सब सुनता रहता है बस। सिर्फ सुनने से इलाज नहीं होता। एक डॉक्टर आपको ब्रीफिंग दे, डॉक्टर ब्रीफिंग दे रहे एजोमैक्स एंटीबायोटिक है, इसकी ये खासियत है, पैरासिटामोल की ये खासियत है, और भी बहुत सी दवाएं ब्रोफिन की ये खासियत है, तब आपने सुन लिया, हाँ बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, बस उसके बाद उठ के चले गए, ना खाया, ना पैसे से खरीदा, ना डॉक्टर से मशवरा किया। तो इससे आदमी सही हो जाएगा? ब्रीफिंग से सही नहीं होता, उसके लिए फिर डॉक्टर से मशवरा करने पड़े। ये इतने इन्होंने फजीलतें बयान किए, मेरे अंदर भी ये मर्ज है, जरूरी नहीं कि वो दवा खाई ले, फिर डॉक्टर बताएगा कि तुम्हें ये दवा खानी भी है या नहीं खानी। इसीलिए मशायख से फिर पूछा जाता है, ये जो आप बताते रहते हैं मेरे अंदर भी कुछ अमराज हैं, तो अलग से हर आदमी बता के पूछे, इसमें लोग शर्माते हैं। तो जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाके बताते हुए नहीं शर्माते, यहाँ तक के बाद दफा ऐसी जगह बीमारियां होती हैं जो शर्म की जगह है, बाद दफा बवासीर तक का लोग ऑपरेशन कराते हैं क्योंकि बीमारी से परेशान होते हैं, तो ऐसी जगह का भी ऑपरेशन कराते हैं जिसको आदमी कितने शर्म हया की बात होती है, लेकिन मजबूर होता है, परेशान होता है। लेकिन अंदरूनी बीमारी बातिन में रिया है, बुग्ज है, कीना भरा हुआ है, इसी तरह किब्र है, दूसरों से अपने आप को सब अमाल करके अपने आप को सबसे VIP समझता है, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर आदमी है। तो ये बीमारियां नहीं बताते, इसको छुपा के रखते हैं, खुद सही हो जाएगा, बयान तो हम सुन रहे सही। तो जिस तरह डॉक्टर के ब्रीफिंग से अमराज सही नहीं होते, इसी तरह मशायख या उलमा के बयान से इलाज नहीं होता, बल्कि अलग से उनसे इलाज तजवीज कराना पड़ता है कि इसमें मेरे लिए क्या इलाज है। हर आदमी का इलाज अलग होता है, हर आदमी का इलाज अलग होता है। हमारे वाला ये मुफ्ती तकी साहब ने भी इसी में लिखा है, ये इस्लाही मजालिस क्या है, ये हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला के मलफूजात का कोत की शरह की है मुफ्ती साहब ने, इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। तो फरमाते हैं कि एक साहब आए हजरत के हकीम उल उम्मत के पास, और वो आए तो थे इलाज के लिए, लेकिन आके वो लग गए, तुमने ये लोटा यहाँ क्यों रखा है, हजरत थानवी को देखते थे। अब औरों से जरा बूढ़ा हो जाता ना, हकीम उल उम्मत फरमाते हैं बूढ़ा हो जाता है, लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, तो वो समझने लगते हैं हम भी कोई बहुत मुअज्जज शख्सियत हो, फिर कोई फौरन बदतमीजी भी कर देता है। लिहाजा जब हकीम उल उम्मत को पता चला कि ये यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं और लोगों की इसलाह कर रहे हैं, तो हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि आप यहाँ इसलाह करने आए या करवाने के लिए आए, ये बताइए, यहाँ पे मैं इसलाह के लिए काफी नहीं हूँ, जो आप हर एक के पीछे लगे हुए, अब आपका ये काम नहीं है। और इससे पता चला कि आपको थोड़ा जिक्र बता दिया तो आप अपने आप को मुसले समझने लगे, अब आप जिक्र मुलतवी कर दीजिए, जिक्र छोड़ दीजिए नहीं क्या, जिक्र मुलतवी कर दीजिए, और आप वजू खाने की सफाई कीजिए, नालियों की सफाई कीजिए, जो नमाजी आते हैं उनके जूते सीधे करके रखा कीजिए, इस तरह आपकी इसलाह होगी। अब वो दवा बदल दी। डॉक्टर देखता है इस दवा का असर सही नहीं हो रहा है, तो जिसको वो ताकत की दवा नहीं चाहिए, उसको अभी मसल दिया जाएगा ऐसी दवा, तो लिहाजा उनको इन कामों में लगाया, इससे उनकी इसलाह हुई। अच्छा दूसरे एक साहब आए, वो भी यही सब करने लगे कि मेरा भी नफ्स मिटेगा। हकीम उल उम्मत फरमा आपको किसने कहा है, मैं मुझे समझ, अपनी तरफ से ना करें, हम जो कह रहे हैं उस तरह चलें। तो ये शेख के बताए बगैर चलने से उसी में नुकसान होगा, उसी में फायदा होगा, वो जानता है कि इसकी बीमारी क्या है। यही फर्क है हम आम लोगों में और डॉक्टर, हमें भी चंद दवाओं के नाम याद है जो मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा याद है, जहन पे जोर डालें, लेकिन दवाओं के नाम याद होने से आदमी डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर को शुरू से पढ़ाया जाता है बीमारी क्या चीज है, सिम्टम क्या चीज है इसकी, और इसी तरह ये कहाँ से पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, किस मौसम में पैदा होती है, मर्दों में होती है, औरतों में होती है, तो ये सारी चीजें जब उसके जहन में होती तब वो इलाज करता है। तो मशायख भी इस रास्ते से गुजरते हैं, 10-20 साल अपने मशायख के साथ रह के जब वो मुरीद उस काबिल होता है तब शेख उसको इजाजत देता है कि आप इतना मेरे साथ रहे हो, अब आप इलाज को समझ गए, लिहाजा आप दूसरों का इलाज कर सकते हैं, तो फिर वो इलाज करता है क्योंकि वो समझ चुका होता है। फिर हर आदमी अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, वो यही समझेगा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हालांकि वो बुरा काम होगा। बाद दफा बुरा काम को अच्छा समझता है, बाद अच्छे काम को बुरा समझता है कि मेहमान आ गए तो इशराक छोड़ दी, आज मेहमान है ना दयाकारी हो जाएगी। जब रोज पढ़ते हो अल्लाह के लिए तो आज भी अल्लाह के लिए पढ़ो, मेहमान तुम्हें क्या देगा, देखने वाला क्या देगा तुम। मैं मशायख मना करते हैं, ये भी शेख से पूछो कि मैं उस दिन छोड़ दिया करूं, क्यों छोड़ दो भाई, जब रोज अल्लाह के लिए पढ़ते हो उस दिन भी अल्लाह के लिए पढ़ो। जिस तरह मखलूक को दिखाने के लिए पढ़ना रिया है, इसी तरह मखलूक के लिए छोड़ना भी रिया है। छोड़ इसको, अपना काम करो तुम, तुम्हें मखलूक से क्या है, मखलूक क्या देगी, तुम अपना मामूल पूरा करो। अगर इस तरह छोड़ने लगे तो फिर कोई भी काम नहीं हो सकता, जमात की नमाज भी बहुत से इसीलिए नहीं पढ़ते, इसमें दिखावा हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, सहाबा इकराम पढ़ रहे हैं, और ये इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि इसमें दिखावा हो जाए, گھر میں بند کمرے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو فقیہ ہیں صحابہ میں سے فقیہ ہیں، ایسا شخص پوچھا گیا کہ جو جماعت اور جمعے کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جمعے کی نماز میں نہیں آتا، جماعت میں شریک نہیں ہوتا اور گھر میں بہت نفلیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص جہنمی ہے۔ ہماری طرح جذباتی مولوی نہیں تھے، یہ لوگ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور بزرگ تھے۔ فرما رہے ہیں ایسا شخص جہنمی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کو۔ جو جماعت کی نماز چھوڑ کے اکیلے پڑھ رہا ہے، یہ پھر جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، ظاہری صحت بھی عطا فرمائے، باطنی صحت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔